आज हम सुनेंगे कहानी नौरंगी की चतुराई। रामगढ़ कस्बे में नौरंगी लाल नामक एक व्यक्ति रहता था। उसकी बचपन से ही संगीत एवं नाच गाने में गहरी रुचि थी। पढ़ाई लिखाई तथा घर के कामों में उसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। माता पिता उसे हर तरह से समझा बुझाकर थक चुके थे, परंतु उनकी बातों का उस पर कोई असर नहीं होता था। आखिर परिवार वालों ने सोचकर उसकी शादी कर दी और शादी के बाद उसे घर से अलग बसा दिया कि शायद शादी के बाद अलग रहकर उसे आटे दाल का भाव मालूम पड़े और वह अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए कुछ काम धंधा करने लगे। कुछ दिन तो नौरंगी लाल का वही पुराना रवैया रहा, लेकिन जब घर में खाने के लाले पड़ने लगे तो आखिर नौरंगी ने कुछ न कुछ काम करने की सोची। आजीविका का तो उसके पास कोई पक्का साधन नहीं था, अतः उसने अपने ही इलाके के अपने जैसे 8 अन्य लोगों का चुनाव करके एक नाटक मंडली बना ली। नौरंगी लाल उस नाटक मंडली का मुख्य था। धीरे धीरे नौरंगी की नाटक मंडली की लोकप्रियता आसपास के गांव कस्बों में भी बढ़ने लगी। फलस्वरूप अब उसे अच्छी आमदनी होने लगी थी। नौरंगी का परिवार अब सुख चैन की जिंदगी बिताने लगा। यदा कदा राज दरबार से भी उसकी मंडली के लिए बुलावा आने लगा था। राज दरबार में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी उसकी मंडली की खूब सराहना होती थी। आखिर एक बार राजा ने उसके कार्यक्रम से खुश होकर इनाम के रूप में अपनी एक जागीर प्रदान कर दी। अब नौरंगी की जागीर से भी अच्छी खासी आय होने लगी थी। नौरंगी और उसके परिवार के दिन अब इसी प्रकार हंसी खुशी बीत रहे थे। एक बार नौगढ़ के जागीरदार माधव सिंह की पुत्री के विवाह के अवसर पर उसकी मंडली को निमंत्रित किया गया। नौरंगी अपनी मंडली के सदस्यों के साथ नौगढ़ प्रस्थान कर गया। नौगढ़ और रामगढ़ के बीच 10 कोस की दूरी थी और रास्ता बहुत खतरनाक जंगलों से होकर गुजरता था। इस घने सुनसान जंगल में जंगली जानवरों का तो डर ही था, लेकिन चोर डाकों का भी डर बना रहता था। नौरंगी लाल अपनी मंडली के सदस्यों के साथ तेज कदमों से नौगढ़ की ओर बढ़ा चला जा रहा था। उसकी इच्छा थी कि वह शाम होने से पहले ही नौगढ़ की हवेली में पहुंच जाए। दिन भर का थका मांदा सूरज पर्वतमालाओं की ओट में छिपने की तैयारी करने लगा था। शाम घिराई थी। सहसा एक पहाड़ी नाले के पास 3 हट्टे कट्टे डाकुओं ने उनका रास्ता रोक लिया और डाकुओं के सरदार ने कड़कती आवाज में पूछा, जो कुछ माल असबाब तुम्हारे पास है चुपचाप हमारे हवाले कर दो, वरना काटकर तुम सभी को इसी नाले में बांधूंगा। बेचारे नौरंगी और उसके साथियों के पास तो तबला और ढोलक के अलावा था ही क्या, जो वे डाकुओं को देकर अपनी जान बचाते। नौरंगी लाल ने बड़ी विनम्रता के साथ डाकुओं से कहा, भाई साहब, हम लोग तो गरीब नाचने गाने वाले लोग हैं और नौगढ़ की हवेली में शादी में जा रहे हैं, हमें माफ़ कीजिएगा, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। डाकुओं पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। डाकुओं के सरदार ने फिर गरजते हुए कहा, अरे तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, जब तक हम ना कहें तब तक तुम लोग हमारे मनोरंजन के लिए नाचते गाते रहो। बेचारा नौरंगी मरता क्या ना करता। उसने विवश होकर अपनी मंडली के साथियों से अपनी कला का कौशल दिखाने को कहा। तीनों डाकू अब मस्त होकर उनका नाच गाना देखने लगे। नौरंगी को डाकुओं से मुक्ति का कोई कारगर उपाय सामने दिखाई नहीं दे रहा था। तभी नौरंगी लाल के तबलची साथी प्यारे को एक तरकीब सूझी। उसने संगीत की कूट भाषा में अपने तबले पर थाप देकर कहा, नौरंगी लाल बिन बिन, एक एक पर 3-3, तबला बाजे दिन दिन। यह सुनते ही नौरंगी लाल की मंडली के कुल 9 सदस्य एक साथ एक एक डाकू पर 3-3 की संख्या में टूट पड़े। डाकू तो संगीत और नृत्य की खुमारी में अपने अस्त्र शस्त्र अलग रखकर मस्ती में झूम रहे थे। उन्होंने इन गवैयों से इस तरह के आक्रमण की कोई कल्पना तक नहीं की थी। नौरंगी लाल और उसके साथियों ने आखिर मार मार कर तीनों डाकुओं को अधमरा कर दिया और उनसे भविष्य में फिर कभी किसी को भी न लूटने खसोटने तथा कोई अच्छा काम शुरू करने की कसम दिलवा कर जमीन में उनकी नाक रगड़वा कर माफ़ी मंगवाई और उनकी जान बख्श दी। इस तरह डाकुओं को पराजित कर नौरंगी लाल शादी में शामिल होने के लिए अपने साथियों के साथ नौगढ़ की हवेली की ओर चल पड़ा। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, कला कोई भी हो उसका मोल जरूर होता है और विपत्ति पड़ने पर हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, वरन अपने दिमाग से सोच समझकर कोई ना कोई तरकीब अवश्य निकालकर उस विपत्ति से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो मेरा पॉडकास्ट सुनते रहिए। धन्यवाद।